افیدو من حیثو افاد الناس. اب یہ بات کہی گئی کہ پھر تم پلٹو جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ. یہ کس کے لیے کہا گیا؟ کہ اصل میں اسلام سے پہلے قریش مکہ جو تھے وہ اتنا اپنے آپ کو سیکرڈ سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے ہم عرفات تک نہیں جائیں گے, کیونکہ عرفات جو تھا حدود حرم سے باہر تھا. عرفات جو تھا حدود حرم میں نہیں ہے, مزدلفہ مینا یہ حدود حرم میں ہے, عرفات باہر ہے. تو کہتے تھے ہماری یہ لوگ دوسرے جائیں نا جو قریش کے نہیں ہیں, ہم اتنے بڑے لوگ ہیں ہم کیوں باہر جائیں, تو وہ نہیں جاتے تھے عرفات تک. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, تم بھی جاؤ وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے, جہاں سے اور لوگ جا کے پلٹتے. تو آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے حج ہے یا یہ جتنے بھی حج کے مناسک ہیں کسی میں کوئی فرق نہیں رکھا کہ کوئی قریش ہے تو وہ ایسے کرے گا, جو دوسرے ہیں وہ تو ایسے کریں گے. اب قریش نے تو اپنا لیے وہ بھی رکھا ہوا تھا نا کہ ہم تو اتنے بڑی چیزیں ہم تو اپنے کپڑوں میں کریں گے, باقی سارے لوگ ننگے کریں, کیونکہ ان کے پاس جو کپڑے ہیں وہ تو گناہ والے کپڑے, ان میں تو انہوں نے گناہ کیے ہوں گے, تو وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری ڈسکریمنیشن جو ہے نا حج میں ختم کر دی. آج دیکھیں آپ حج کیا ہے کہ کوئی ریسزم نہیں, کوئی ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف ریس, کلر, جینڈر, لینگویج سب ختم کر دی. کسی کا بلڈ سیکرڈ نہیں ہے, کوئی سید زیادہ نہیں ہے کہ وہ آگے بیٹھے گا, آگے حرم میں کھڑا ہوگا, وہ طواف پہلے کرے گا دوسرے بعد میں کریں گے, یا ٹائمنگ رکھے ہوں ایشین جو ہیں اس ٹائم پہ کریں ان کے لیے بس یہی ٹائم ہے باقی سارا ٹائم عرب کے لیے, ایسا کچھ نہیں ہے, سب اکول ہے وہاں پہ. سبحان اللہ, پھر بھی ہمارے دماغوں سے یہ ریسزم نہیں نکلتا, ڈسکریمنیشن نہیں نکلتی, پھر بھی نہیں نکلتی. سوچیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے حج میں سکھایا یہ, کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کوئی ڈسکریمنیشن, پھر بھی کیوں نہیں سمجھ آتی ہمیں. استغفر اللہ, اور بخشش مانگو اللہ سے, یعنی جو چیزیں پہلے ہو گئیں, جو پچھلی رسمیں, جو بھی طریقے اپنے طور پہ نکالے ہوئے تھے ان کے اوپر اب توبہ کرو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم, جو پہلے گزر چکا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے, اللہ بخشنے والا ہے, اس کے اوپر سچی توبہ کی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات سمجھنے کی, سیکھنے کی, صحیح سے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان آیات کے ساتھ ہی یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے. پہلے کیا بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق عطا فرما, اللہ حج مبرور کی توفیق عطا فرما. فَإِذَا, پھر جب, قَضَيْتُمْ, پورے کر چکو تم, مناسککم, اپنے مناسک یعنی جو حج کے ریچولز ہیں, جو یہ سب چیزیں ہیں جو آپ 10 تاریخ کو کرتے ہیں, جس میں قربانی ہے, جس میں آپ رمی کرتے ہیں, جس میں بال کاٹے جاتے ہیں, طواف افادہ بھی کیا جاتا ہے, جب یہ سارا کر چکو, فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, تو یاد کرو اللہ کو جیسے یاد کرنا ہے تمہارا اپنے آبا و اجداد کو, یا پھر اس سے بھی زیادہ یاد کرو. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک اور جو ان لوگوں کی کا طریقہ تھا اس کو نگیٹ کیا جا رہا. اصل میں کیا ہوتا تھا کہ جب 10 تاریخ کو یہ سارے مراسم حج جو مناسک ہیں حج کے یہ پورے کر لیے جاتے تھے, تو آپ میں سے جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پھر بھی مینا میں کوئی 2 دن کوئی 3 دن رہتا ہے, ٹھیک ہے, 11, 12, 13 تاریخ کو مینا میں آپ ٹینٹس میں رہتے ہیں. تو عربوں کا کیا طریقہ تھا, وہ وہاں پہ جب رہتے تھے تو اب ظاہر حج آلموسٹ مکمل ہو چکا, یعنی آپ احرام سے بھی باہر آ چکے ہوتے ہیں اس وقت, تو ایک بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں, تو وہ مشاعرے کرتے تھے وہاں پہ اور بڑے قصیدے کہتے تھے اپنے آبا و اجداد کے. کوئی کہتا تھا میرا باپ تو بڑا مہمان نواز تھا, کوئی کہتا تھا میرا دادے نے تو یہ کارنامے کیے, وہ تو اتنا بہادر تھا, کوئی کہتا تھا میرا تو فلانا اتنا سخی تھا, وہ تو اتنا خرچ کرتا تھا. یعنی وہ اپنے آبا و اجداد کے اتنے کارنامے بیان کرتے تھے نا, کوئی جھوٹ کوئی سچ, بس سب اتنی ان کی بڑائیاں کرتے تھے, یہ ان کا طریقہ تھا وہاں پہ. اس میں وہ پرائیڈ سمجھتے تھے, اپنی اپنا بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ دیکھو ہم کتنے بڑے خاندان. جیسے آج بھی کئی لوگوں کو یہ ایک خپت ہوتا ہے, کہ اپنی برادری، اپنی آباؤ اجداد، ان کے قصے یا ان کی کہانیاں، بس اسی طرح اس کو وہ بہت یعنی اس میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن بس وہ ان کے کارنامے ہی بس بیان کرنے میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، فرمایا کہ نہیں تم یہ نہیں کرو گے وہاں پہ. وہاں پہ کیا کرو؟ فذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، اپنے بڑوں کو نہیں یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. یہ اللہ کی یاد کے دن ہے، اسی لیے قربانی کے دن سے لے کر اور 13 تاریخ کی عصر کے بعد تک تکبیرات بیان کی جاتی ہیں، ہر نماز کے بعد بھی تکبیرات. یہ تو ایک قولی ذکر ہو گیا، عملی ذکر بھی کیا جاتا ہے. یہ بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے کہ جب جو رمی کی جاتی ہے، جو طواف افادہ کیا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. جو قربانی کی جاتی ہے، یہ فعلی ذکر ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا قولی ذکر، ایک فعلی ذکر، ایک قلبی ذکر، یعنی دل میں بھی اللہ کو یاد کرو. تو ہر طرح سے یہ دن اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے، نہ کہ اپنے بڑوں کو یاد کرنے کے دن. اچھا آج کیا ہوتا ہے، آج کے دور میں جب ہم وہاں پہ ان ٹینٹس میں ہوتے ہیں، آپ لوگوں میں سے جو حج پہ جا چکے ہیں ان کو پتا ہوگا، ظاہر ہے انسان اب سارے کام کر چکا ہے تو اب بس وہ 3 دن وہاں گزارنے ہیں اور اب واپس جانا ہے. تو اب کیا لوگ بڑے ریلیکس ہوتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ، کبھی کوئی بات چھیڑ لی، کبھی کوئی دنیا کی باتیں، دنیا جہان کی ہو رہی ہیں، سوشلائزنگ ہو رہی ہے، اور کبھی یہ آپ کے فون تو آج وہاں پہ بھی چلتے ہیں، کبھی وہاں پہ فون پہ لگے ہوئے سارا دن، اللہ کا ذکر پھر بھی نہیں ہوتا. یہاں ٹھیک ہے آج باپ باپ کے یا باپ اجداد کے کارنامے شاید کسی کو پتا بھی نہ ہو، میرے خیال میں کوئی ہوگا جس کو اپنے پردادا کا بھی نام یاد ہو. آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کو یہ پتا ہوگا، آپ کے چلو دادا تک شاید پتا ہو لیکن پردادا کا کسی کو نہیں پتا ہوگا. تو وہ لوگ تو بہت اس میں ماہر تھے نا، وہ تو اپنے لینیج کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، ان کو اپنے پیچھے تک آباؤ اجداد کے نام یاد ہوتے تھے، تو اس میں وہ فخر محسوس کرتے تھے. تو آج اگر وہ نہیں ہے تو اور بہت سی چیزیں جو مشغول کرنے کی، سب چیزوں کو چھوڑ کے کیا کرنا چاہیے، اللہ کی یاد، یہ اللہ کی یاد کے دن. تو اس لیے اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ انجوائمنٹ کے دن ہے، یہ فن کے دن ہے، یہ بس ہم اب آرام کریں، نہیں، ان دنوں میں بھی یاد کرو اللہ کو. اور ایون جب دیکھیں حج کے منافق ختم ہو گئے، آپ واپس آ گئے، تب بھی اللہ کی یاد، جہاز میں بیٹھتے ہی اللہ کی یاد ختم ہو جاتی، پھر وہی ٹی وی لگا لیتے ہیں، پھر وہی موویز چل پڑتی ہیں، پھر گپ شپ شروع ہوتی. نہیں، واپس آ کے بھی اب تو اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اتنے دن بہت عبادت کر کے ہیں، اب تو بالکل ہی ریلیکس ہو جانا. تو ایک انسان کے دماغ میں ہوتا ہے نا کہ اتنے دن میں نے اتنا تو کر لیا، اب کیا کروں، اب اس سے بھی تھک گئے، اب پھر سارا ٹائم دعوتوں میں، سارا ٹائم ادھر ادھر مبارکبادیں وصول کرنے میں، اس میں ہی لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ جتنا تم اپنے آباؤ اجداد کو یاد کرتے ہو، نہیں اس سے بھی زیادہ ذکر کرو، یعنی جتنی توجہ دوسری چیزوں پہ ہے نا، اس سے زیادہ اللہ کی یاد تمہارے ساتھ ہونی چاہیے. جب لاسٹ ڈیز کا بتا دیا گیا، کیا ہدایت کی گئی، اللہ کی یاد، تو یعنی یہ یاد لے کے جانا اپنے ساتھ اپنے گھر، اور وہاں پہ بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا، بھولنا نہیں ہے. فمن الناس من یقول، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کیا کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ مجھے دنیا میں عطا کر دے، مجھے دنیا میں دے دے. لوگوں میں کوئی ایسا ہے، یہ دعا بتائیے، دعا بھی آپ کو پتا ہے ذکر کی ایک فارم ہے، اور وہاں پہ دعا کر کے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں ان دنوں میں. تو کوئی ایسا بھی ہے جو کیا دعا کرتا ہے، بس حج پہ بھی جاتا ہے تو اے اللہ مجھے دنیا دے دے، اللہ مجھے دنیا دے دے. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال مکان. یعنی دعائیں بھی انسان کی جو ہوتی ہیں نا، وہ اس کے اندر کا پتہ دیتی ہیں کہ اس کے دل میں کس چیز نے ڈیرے جمائے ہیں. दुआओं से आपको पता चलेगा कि आपकी सबसे ज्यादा मोहब्बत किस चीज से है, क्या चीज है जिसमें इंसान गर्क है, क्या चीज है जो उसके दिमाग पे छाई हुई है। वो अगर देखना चाहते हैं तो दुआएं देख लें कि दुआएं हम क्या मांगते हैं। वो लोग जब वहां पे दुआ मांगते थे तो उनमें से कोई कहता था अल्लाह बारिश कर देना कि हमारी खेतियां खूब हो जाएं, कोई कहता था कि अल्लाह हमारे जानवर अच्छे हो जाएं, कोई कुछ कहता था, यानी इस तरह की दुनियावी चीजों की दुआएं करते थे। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, यानी दुनिया वहां पे भी जाके दुनिया ही मांगते रहते थे, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि तुम क्या करो, वो आगे आ रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, और आखरत के लिए नहीं होता फिर उनके लिए कोई हिस्सा, आखरत में कुछ नहीं उनको मिलेगा क्योंकि उन्होंने कभी आखरत मांगी ही नहीं, उनकी बस ये अल्लाह औलादे यहाँ पे अच्छी दे दे, यानी बकसरत दे दे, गल्ले हमारे पैदा हो जाएं, बस हमें यहाँ पे ये मिल जाए वो, यानी वो सारी दुआएं, दुश्मनों पे फतह हासिल हो जाए, बस और हमें और माल मिल जाए, इस तरह की दुआएं मांगा करते थे। अल्लाह ताला ने कहा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, इसका मतलब है कि आखिरत मांगने से भी मिलती है, आगे आएगा कोशिश भी है लेकिन आखिरत की तलब भी होनी चाहिए। अगर किसी के अंदर आखिरत की तलब ही नहीं है कि अल्लाह मुझे आखिरत में ये चीजें दे दे, मुझे जन्नत दे देना, मेरी बख्शिश हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला भी नहीं उसको बख्शेगा, अल्लाह भी नहीं उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा रखेगा। जैसे हम बहुत से लोगों को सोचते हैं ना, फलां इतने नेक काम करता, इतने नेक काम करता, तो क्या भला उसकी बख्शिश नहीं होगी, क्या उसको जन्नत नहीं मिलेगी, क्या हुआ इससे अगर वो मुसलमान नहीं था। देखिए उन्होंने आखिरत चाही ही नहीं, उन्होंने आखिरत में कुछ नहीं चाहा, उन्होंने सब कुछ चाहा यहीं पे मिल जाए। तो जो आखिरत नहीं चाहता ना, वो नेकी भी अगर करता तो बस उसको ये होता है यहाँ पे कुछ इसका बदला मिल जाए, कोई यहाँ की मुसीबत टल जाए, कोई यहाँ का मसला हल हो जाए, तो बस यहीं पे मिल जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंसान आखिरत की नीयत रखे। लेकिन अगर बस यही देखें, आप अक्सर लोग आज भी जब जाते हैं तो उनका क्या होता है, अल्लाह वीजा लग जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए, जॉब आगे मिल जाए, प्रोमोशन हो जाए, मेरी बच्चे को फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, फलां बच्चे की ये तरक्की मैं देख लूं, मतलब सारी ऐसी दुआएं, क्योंकि दुनिया छाई भी है ना, दुनिया छाई भी है, इतना बड़ा घर मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ये हो जाए वो, और आखिरत में क्या चाहिए, वो नजरों से ओझल है। अल्लाह ताला कहते फिर ऐसे लोगों के लिए कोई हिस्सा नहीं है आखिरत में, इन्होंने आखिरत मांगी ही नहीं। وَمِنْهُمْ, और फिर दिखाया गया एक और बंदा जो कैसे मांगता है, क्या मांगता है, और ये है जो सही मांगने वाला है, और इससे हमें पता चलता है कि मांगना कैसे और क्या मांगना है। देखिए इंसान को अल्लाह ताला कुरान में ये भी सिखाता है कि तुमने मांगना क्या है, इंसान इतना जाहिल है कि उसको ये भी नहीं मालूम कि कैसे मैंने मांगनी है दुआ और किस चीज की मांगनी है, क्या मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मिनहुम, उनमें से मैं अकूल जो कहता है रब्बना आतीना फिर दुनिया, लेकिन सिर्फ इतना नहीं, हसना, दुनिया में भलाई मुझे अता फरमाना। ये बहुत जरूरी बात है कि सिर्फ दुनिया नहीं, दुनिया की भलाई, दुनिया की भलाई में फिर क्या आ जाता है, ठीक है दुनिया की भलाई के अंदर है कि इंसान औलाद मांगे, लेकिन भली औलाद, अच्छी अच्छाई जिसमें खैर हो, खैर वाली औलाद, नेक औलाद, ठीक है इंसान दुनिया की हसना के अंदर माल भी है, लेकिन कौन सा माल, हलाल माल, पाकीजा माल, बरकत वाला माल, यानी भलाई मांगी उसने, किसी ने नेक बीवी मांगी, यानी नेक काम, यानी ये सारी चीजें दुनिया की भलाई में आती हैं, बीवी लेकिन नेक बीवी, इसी वो अब जो रब्बना आती ना फिर दुनिया कहे, वो कहेगा बस मेरी शादी हो जाए, और जो हसना कहता है वो उसकी ब्यूटी मांगता है कि जो भी दुनिया में अच्छा है, अच्छाई है जिस चीज के अंदर, औलाद है तो जो अच्छी औलाद है, माल है तो जो पाकीजा माल है, ठीक है, और अगर सेहत है तो वो वाली सेहत है जिसमें इंसान को अच्छाई करे, आफियत, ठीक है, नेक लोगों का साथ, इस्लाम पे साबित कदमी, ईमान पे खात्मा, ये सब दुनिया की भलाइयां हैं। तो ये नहीं है कि दुनिया की भलाई ना मांगो, इसको नहीं बुरा कहा गया, मांगो बल्कि पहले बताया गया इसलिए कि दुनिया की भलाई होगी तो उससे ही आप आखिरत कमाएंगे ना, रिस्क हलाल होगा तो उससे सदका करेंगे तो कबूल होगा, नेक औलाद होगी तो वही सदका जारिया बनेगी ना, अगर सेहत होगी तो वो फिर ही आप नेकियां कोई कर सकेंगे ना, नेक सोहबतें होंगी तो फिर ही वो आपको अल्लाह की तरफ बुलाएंगी ना, इस्लाम पे साबित कदमी होगी तो ये भलाई है, आफियत मिलेगी तो कोई नेकी भी कर सकेंगे। इल्म, इल्म वो वाला जो नफे वाला हो वो है हसना, सिर्फ ये चीजें नहीं मांग लेनी, इनकी भलाई फिर दुनिया भी हसना दे, हम सिर्फ दुनिया 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 नहीं, हसना वाली दुनिया दे, भलाई वाली दुनिया दे। देखिए हम कभी औलाद मांगते हैं अल्लाह औलाद दे दे अल्लाह बस, लेकिन ये नहीं मांगते आगे कि हसना वाली क्या भलाई वाली माल दे दे बस इसको ये जॉब मिल जाए, ये नहीं कि हसना वाली। तो ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है, इसमें हर तरह की भलाई आ गई है सुभान अल्लाह, हर तरह की, चाहे वो औलाद से मुतालिक हो, चाहे माल से हो, चाहे सेहत से हो, चाहे और खैर और आफियत से हो, चाहे इस्लाम के ऊपर साबित करनी हो, चाहे ईमान की हो, चाहे इल्म की हो, चाहे अमल की हो, सब तरह की भलाइयां इस दुनिया में जितनी भलाइयां है ना जो खैर हो सकती है यहाँ पे वो मांग ली, कितनी बड़ी दुआ है, ठीक है। और इतनी नहीं सिर्फ बात मांगी, वह फिल आखिरत ही हसना, अल्लाह आखरत में भी हसना देना, और आखरत की सबसे बड़ी हसना क्या है, जन्नत, कि अल्लाह जन्नत अता फरमा देना, यानी आखरत में भी मुझे हिसाब किताब आसान हो जाए, जन्नत मिल जाए, दाएं हाथ में नामा आमाल मिल जाए, अल्लाह के अर्श का साया मिल जाए, अल्लाह का दीदार मिल जाए, ये सब चीजें हसना में, पुल सिरात आखरत की हसना में, पुल सिरात पे तेजी से गुजरना मिल जाए, ठीक है। तो आपने क्या सीखा फिर, दुनिया की भलाई क्या है, दुनिया की भलाई क्या है, आफियत है, आसानियां है नेकी में, तंदुरुस्ती है, नेक बीवी बच्चे हैं, हलाल रोजी है, इल्म अमल वाला इल्म है, अच्छी सवारियां हैं, नौकर चाकर हैं, इज्जत है, ये सब चीजें दुनिया की हसन और आखरत की भी हसन आपने जान ली। फिर उसके बाद कहा गया कि और क्या कहता है, यहाँ तक ही नहीं सिर्फ मांगता, कहता है वाकई ना आदाब नार, अल्लाह आग के अजाब से भी बचा लेना। तो ये क्या आखरत की हसना में नहीं आ गई, देखिए हो सकता है इंसान को जन्नत मिले लेकिन जहन्नुम में से गुजर के जाना पड़े, जहन्नुम में डुबकी लगा के फिर उसको जन्नत मिले, के अजाब से बचा ले, यानी वो दुनिया और आखरत की हसना चाहता है, और सबसे बड़ी उसकी ये है कि आग के अजाब से मैं बच जाऊं, क्योंकि सूरह आले इमरान में आता है मन ज़ुहज़िह अनि नारी व उदखिल अल जन्नता फ़क़द फ़ाज़, जो आग से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिए गए वो है कामयाब। सिर्फ जन्नत में दाखिला कामयाबी नहीं है, आग से बच जा के बच के फिर जन्नत में जाना कामयाबी है। वो भी होंगे कोई लोग जो पहले जहन्नुम में जलेंगे जलेंगे जलेंगे, फिर उसके बाद चाहे एक दिन ही जले, फिर उसके बाद जन्नत में डाले जाएंगे, तो ये मुकम्मल कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी तो ये कि जो बच जाए जहन्नुम से, जहन्नुम की लू भी ना लगे जिसको, एक गोता भी, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, जिसको एक गोता भी ना, एक डुबकी भी ना जहन्नुम में लगाई जाए और सीधा जन्नत में दाखिल कर दे, वो है कामयाब। ये कामयाबी हमें सबको मतलूब होनी चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए, अल्लाह ये कामयाबी हमें अता फरमा। तो ये है दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मांगा करते थे, बुखारी में बहुत ज्यादा इस दुआ को मांगते थे। यानी अगर आपके पास कोई दुआ मांगने का टाइम नहीं है ना, आपका रोजा खुलने वाला है, आपको पता है कि ये टाइम दुआ की कबूलियत का, ओ मैंने तो दुआ मांगनी थी, या कोई ऐसा मोमेंट है आप सोचते हैं कि अल्लाह ये इस वक्त दुआ कबूल होती है, आपके पास थोड़ा टाइम मिल गया, आप मुल्तजिम के नीचे हैं खाना काबा में, तो आप वहां पे भी दुआ कबूल होती, तो उस वक्त आप क्या कहते हैं, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना तो वहां फिर आखिरत ही हसना तो वहां फिर आजाब न, सब कुछ ही आपने मांग लिया, कुछ रह ही नहीं गया। सुभान अल्लाह, सब कुछ हो गया इसके अंदर। हाँ देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफा एक सहाबी थे वो बीमार थे, तो उनके पास गए, देखा वो इतने पतले हो गए कि हड्डियों का ढांचा बन गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे, तुम कोई दुआ मांगते हो? उनने कहा हाँ, मेरी ये दुआ है, शायद हम में से भी कोई कभी ये बात सोचता हो, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अल्लाह जो अजाब तूने मुझे आखरत में देना है ना, अल्लाह वहां पे ना देना, मुझे दुनिया में ही दे दे। कितनी फिकर होगी उनको ना कि आखरत के अजाब कितने सख्त है, अल्लाह वहां ना देना, वहां बचा लेना, तो मुझे दुनिया में ही अजाब दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो फरमाया सुभान अल्लाह, किसकी ताकत है, किस में बर्दाश्त है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी दुनिया के अजाब भी नहीं सह सकते हो तुम, तो ये दुआ ना करो, ये दुआ करो रब्बाना आतिना फिर दुनिया हसना वो फिर आखिरत हसना। तो फिर उन्होंने ये दुआ मांगनी शुरू की और अल्लाह ताला ने उनको शिफा दे दी। तो आप देखें हम जब हज या उमरे पे जाते हैं, तवाफ करते हैं ना हम, तो हम जब रुकने यमानी से हिजरे अस्वद के दरमियान जाते हैं तो क्या दुआ मांगते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ मांगने को फरमाया। तो हम उस वक्त चाहे हम तवाफ के फेरे में कोई भी दुआएं कर रहे हो, लेकिन उस स्पेसिफिक जगह पर हम ना सिर्फ रब्बना आतिना करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जब भी कभी रुकन के पास से गुजरता हूँ ना, रुकने यमानी, हाँ, तो मैं देखता हूँ कि वहां एक फरिश्ता है और वो आमीन कह रहा है, तुम जब कभी यहां से गुजरो तो रब्बना आतिना वाली दुआ पढ़ा करो। इब्ने मरदवे की ये रिवायत है सुभान अल्लाह, कि ये दुआ उस वक्त पढ़नी है। तो इसमें कोई हरज नहीं कि इंसान दुनिया की भी खैर मांगे और आखिरत की भी खैर मांगे, ये कोई वो नहीं है कि हमें हमें तो दुनिया नहीं चाहिए, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं, इस दुनिया में भी इंसान है ना हम, हमारी जरूरियात है, दुनिया की खैर नहीं मांगते। मसलन बीमार हो गए, अब जो बंदा बीमार ही पड़ा हुआ वो क्या करेगा, वो किसी और का भला क्या करेगा, वो तो अपने लिए भी नहीं कुछ कर सकता, वो तो खुद मोहताज हो जाता है, वो क्या इबादत कर सकेगा, उसकी तो बाकी दिनों की जो फर्ज इबादत है वो भी नहीं सही हो सकती, वो नफल क्या पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इंसान दुनिया की भी भलाई मांगे अल्लाह से, और अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है कि हम कहें बस में ये। किसी ने कहा मुझे कि कहा जाता है कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती, तो मैं एक ही दुआ मांग लेती हूँ, क्योंकि अगर कोई कबूल हो नहीं तो वो बस एक ही कबूल हो जाए वही काफी है। क्यों? अल्लाह ताला को आपने समझा हुआ कि वो सिर्फ एक कबूल कर सकता है, वो तो सारी कायनात मिलके ना, यानी अव्वल से आखिर तक इंसान और जिन और बूढ़े और बच्चे और जवान और मर्द और औरतें सब अल्लाह को पुकारे एक मैदान में खड़े होकर, और वो सबको अता करे, सबको अता करे। तो हदीस में आता है कि उसके खजानों में जरे बराबर भी कमी नहीं आती, जरा सी भी कमी नहीं आती उसके खजानों में। तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि वहां बस एक चीज बस ये मुझे मिल जाना तो काफी, नहीं, कहो अल्लाह हम तेरे मोहताज हैं, हमें हर तरह की आफियत चाहिए, हर तरह की भलाई चाहिए, हर तरह की खैर चाहिए। क्या दुनिया की खैर नहीं चाहिए आपको सर्वाइवल के लिए? क्या यहाँ की इज्जत नहीं चाहिए? क्या यहाँ पे आफियत नहीं चाहिए? क्या यहाँ पे सलामती नहीं चाहिए? तो ये कभी ना सोचिए यहाँ का तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कोई लोग बहुत ही अपने आप को जब नेक समझने लगते ना, बस हमें आखरत मिल गई, हमें दुनिया में परवाह नहीं है कुछ मिले कि नहीं मिले, नहीं, कहो अल्लाह मुझे यहाँ पे भी चाहिए, क्योंकि तेरे खजाने बहुत वसी है, अल्लाह बहुत वसी है, तू दे के थकता थोड़ा ही है, कमी थोड़ी आनी है उसके पास कि आपको दे दिया तो कोई कमी हो जाएगी, वो बखील थोड़ा ही है। तो इसलिए अल्लाह से मांगो, अल्लाह खुश होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जूते का तस्मा भी है ना वो भी अल्लाह से मांगो। सहाबा कराम के पास नमक खत्म हो जाता था तो नमक पहले अल्लाह से मांगते थे फिर किसी और को कहते थे। तो फिर अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो अल्लाह को? तो ये सोचो कि वो इतना बड़ा शहंशाह है, सारी कायनात
उसकी मिल्कियत है, वो कुछ भी दे उसको परवाह नहीं है। वो इंसानों की तरह थोड़ी है कि एक चीज दे दी तो फिर उसके बाद का दो तुमसे दी तो थी अब फिर मांगने आ गई, वो ऐसा थोड़ी है। हम ही है जो इतने अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम छोटी सी चीज मांग कर सोचते बस इतना काफी। तुम मांग मांग के भी थक जाओगे ना, जो आखिरी जन्नत ही है उसको अल्लाह ताला इतना अता करेगा, उसको कहेगा तुम मांग, वो मांग मांग के भी थक जाएगा। तो अल्लाह ताला फिर खुद फरमाएगा कि जितना कुछ दुनिया में, और उससे 10 गुना, उससे 10 गुना जितनी पूरी दुनिया थी और जो कुछ उसमें था वो मल्टीप्लाई विद 10 करके वो मैं तुझे देता हूँ। वो कहेगा अल्लाह मुझसे मजाक करते, हैरान होगा ना, अल्लाह मुझसे मजाक करते, नहीं अल्लाह ताला फरमाएगा मजाक नहीं करता तुम्हारे लिए ये है। तो ये देखिए सुभान अल्लाह, हम कभी ये ना सोचे जब मांगने लगे ना तो अपनी झोली नहीं अल्लाह की इनायत की तरफ देखे, मेरी झोली तो छोटी है लेकिन अल्लाह तेरे खजाने बहुत बड़े। ठीक है, तो बना आती ना फिर दुनिया हसन, अल्लाह दुनिया की हसन और फिर आखरत की हसन। अल्लाह हु अकबर। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، यही लोग हैं उनके लिए एक हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया। यानी अब ये ना समझ लेना कि सिर्फ आप दुआएं करके अल्लाह मुझे दुनिया की हसन आखरत की दे दे और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर ही तकिया किए बैठे ना कि हमने दुआएं तो कर ली बस अब हमने जन्नत नहीं जाना। नहीं, अल्लाह ताला ने फरमा दिया यहाँ पे यानी दुआ करो फिर उसके बाद कोशिश करो, क्योंकि मिलेगा वो उसमें से हिस्सा मिलेगा जो तुमने कोशिश की है। दुआ ठीक है अपनी जगह लेकिन फिर तुम्हारी कोशिश जो तुमने कमाई की कसब किया उसमें से ये लोग है जो ये दुआएं करते हैं फिर उसके बाद कोशिश करते हैं, तो उनको उनकी कमाई जो उन्होंने की है जो उन्होंने कोशिश की मेहनत की उसमें से हिस्सा मिलेगा, उसके मुताबिक हिस्सा मिलेगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, याद रखना अल्लाह को हिसाब चुकाने में देर नहीं लगती, बहुत जल्दी हिसाब चुका लेता। उसके लिए पूरी कायनात पूरे जितने लोग होंगे उनका हिसाब चुकाना ऐसे ही जैसे एक का हिसाब चुकाना। कभी हम सोचते हैं ना अल्लाह ताला कैसे हिसाब किताब लेगा इतनी खलकतों की और किसने क्या क्या किया, कोई 100 साल जिया, कोई 200 साल, कोई 1000 साल, कोई पता नहीं कितनी कितनी लंबी उम्रें होती थी लोगों की, तो कैसे अल्लाह ताला हिसाब लेगा। तो अल्लाह के लिए हिसाब लेना मुश्किल नहीं है। और इसका हिसाब कैसा होगा, पिछले दिनों किसी ने बड़ी अच्छी चीज शेयर की कि देखो सोने को हम जब नापते हैं तो तोले को यूज करते हैं, फ्रूट को नापते हैं तो किलो को यूज कर लेते हैं, अच्छा फिर उसके बाद दूध को नापते हैं तो गैलन यूज करते हैं, लेकिन अल्लाह जब आमाल को नापेगा ना तो वो जर्रे जर्रे के साथ नापेगा कि जर्रे का भी वजन होगा, उसको भी तोलेगा तो जर्रे को तोलेगा। हाँ वहां पे किलो और वो नहीं है कि इतने किलो गए, 1.5 किलो, 2 किलो, इतने गैलन या इतने मीटर या इतने, नहीं वहां पे जर्रा जर्रा भी तुलेगा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। एक अनदर ब्यूटीफुल लेसन था आज हमारे लिए, आप इसको इन आयात को सुने और एक एक लफ्ज को देखें आपके अब आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा। जब आपने तफसीर सुनी है तो इससे सुनने से पहले कैसा लग रहा था सुन के पढ़ के इन आयात को, और तफसीर सुनने के बाद अब ये आयतें कैसी लग रही हैं।
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب